بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو. یہ بندشیں کیا ہیں؟ لائبلٹیز، پابندیاں. حقیقت یہ کہ ایک مومن کی زندگی پابند زندگی ہوتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا شتر بے مہار، جو چاہو کرو، جدھر چاہو جاؤ، یہ ایک ایمان والے کو سوٹ نہیں کرتا. وہ تو اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پوچھ کے کرتا ہے کہ مالک بتا میں کیا کروں. تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جا رہے ہیں. اب اس میں آپ کو حلال اور حرام کا بہت ذکر ملے گا. تو فرمایا سب مویشی حلال ہیں سوائے چند ایک جن کا ذکر آگے آئے گا. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. یہ کون سی ہوتی ہیں؟ ریچولز، شاعر جیسے داڑھی ہے. اور اسی طرح ہر مذہب کی ایک نہ ایک ریچول ہوتی ہے نا، جیسے مصلی، ٹوپی ہے، یا خانہ کعبہ، بیت اللہ. فرمایا ان کا مذاق نہ کیا کرو، جنت جہنم کا مذاق نہ کرو، لفظ مولوی کا مذاق نہ کرو. آج آپ دیکھیے کہ لوگ اتنے بے خوف ہو گئے جنت جہنم کے لطیفے بنائے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. حرام مہینوں میں کسی کو حلال نہ کرو. قربانی کے جانوروں پر دسترازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں. اب وہ جانور جو خانہ کعبہ میں قربان کیے جائیں وہ اگر محترم ہے تو یہ بتائیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور قربان ہوتے ہیں کیا وہ محترم نہیں؟ دو چار سال سے ایک چیز عام دیکھی جا رہی ہے، جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے تصویریں بکروں کو کہیں گلاسز بنائے ہوئے ہیں، کبھی ان کے حلیے بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، اچھا نہیں. جو بھی چیز لوگوں کے لیے کھیل بن جائے اس کی قدر نہیں رہتی. مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی قدر ہے نا ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنے بچے کو کھیل رہا ہے اس کے سامنے قرآن رکھ دیں، پھاڑے، اس کے اوپر لکھے، لائنیں لکھے، تو ایک وقت آئے گا ہمیں بھی قرآن پاک بڑا نہیں لگے گا. تو جہاں سے پہلی چیز عمل کی لکھیے، کبھی کسی دین کے ریچول کا مذاق نہ اڑائے. اسی میں حوروں کا مذاق، چار شادیوں کا مذاق، مردوں کی داڑھی کا مذاق، ٹخنوں سے اونچی شلوار کا مذاق، پردے کا مذاق، حجاب کا مذاق نہیں. اپنی ضرورت اتنی نہ بڑھائیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر بات کی جائے. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا. مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے عمرے پہ جانے سے روک دیا تھا. تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یعنی دشمن تم پہ زیادتی کرے، اس کے جواب میں تم دشمن پر پھر بھی زیادتی نہ کرو. کتنا پیارا دین ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی پر تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. اس حصے کو ہائی لائٹ کیجئے گا آیت 2 میں، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. آج کے اس پارے کا آپ کے میرے لیے ٹائم مینجمنٹ کا نقطہ یہی ہے، تعاون علی البر، نیکیوں کے کاموں میں تعاون کیجیے. آج وقت کی کمی کا شکار ہیں لوگ، کہتے ہیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، کیا کریں، کدھر جائیں. تو آپ ایک کام کیجیے، آپ اپنے اس وقت میں نیکیاں کرنی شروع کر دیں. یقین کریں نیکی کی ایک برکت ہے. آپ اکیلے ہی ادھر آتے ہیں، اپنے ساتھ چار کو لے آئیے، آپ دیکھیے گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں اتنی برکت ڈال دے گا، آپ کے کام آسان ہوں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نیکیوں کے کاموں میں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم ایک گھر میں چار لوگ رہتے ہیں، چار لوگوں کے وہ کام جو چاروں نے الگ الگ کرنے ہیں آپ ایک جگہ جمع کر لیں. جیسے میں اکثر سسٹرز کو کہوں تو لوگ کہتے ہیں لوگ کون کسی کے گھر کا کھاتا ہے. میں نے کہتی ہوں دیکھیے مثال ہے کہ ایک تین گھر ہے نا ایک گلی میں، یا اوپر نیچے ایک گھر میں رہتے ہیں، تین ہانڈیاں جو پکتی ہیں، تین دفعہ پیاز کٹتے ہیں، تین دفعہ لہسن چھلتے ہیں، تین تین تین، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن ایک سسٹر تینوں کا اکٹھا کھانا بنا لے، ایک ڈونگا آپ لے لیں، ایک وہ لے لے، ایک وہ لے لے، کل میں پکا لوں گی، پرسوں آپ پکا لیں. آپ کہیں لو کون کھاتا ہے؟ ہم تو اتنے اللہ معاف کرے کہ سیلف کانشیس ہیں، ہم اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، ہم ان کے گھر کا نہیں کھاتے، ہم اتنے کانشیس ہیں. جن لوگوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں وہ فوڈ کے معاملے میں کانشیس نہیں ہوتے. یاد رکھیے، اپنے بچوں کو مجاہد بنا کر پالیں. صحابہ کرام نے جنگوں میں ہیک دیتی ہوئی چربی بھی کھائی ہے، درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے. جب ہم بہت سینسٹیو کر دیتے ہیں، بہت حساس کر دیتے ہیں نا اپنی نسلوں کو، تو وہ تو ہر وقت اپنے بارے میں. इसलिए हमेशा याद रखिए कि नेकियों में तावन करें, वक्त को बचाएं हर काम में। आप देखेंगे कि रिसोर्सेज कितने बचेंगे। जैसे दो तीन सिस्टर्स थी ऐसी कहीं, तो दोनों तीनों माल की कमी का शिकार थी। वो भी मदद चाहती थी, वो भी चाहती थी। कहती घर का किराया बहुत है। मैंने कहा एक बात तो बताइए, आप दोनों मिलके एक ही घर में क्यों नहीं रह लेती? आप रह सकती हैं, उनके असबाब थे सब थे, तो एक का किराया तो खत्म हुआ ना, तो दूसरी का किराया आधा आधा चला गया। लेकिन हम करते नहीं है, हम बस दफा छोटी छोटी चीजों को कहते हैं नहीं छोड़ दो, तो अल्लाह ताला कहते हैं नेकियों में तावन करो। तो कल तक आपने मैंने अब इस पे गौर करना है, लिख के लाइए अपनी राय दे कि क्या नेकी की आपने और उसकी बरकत आपको मिली। याद रखिए नेकी में तावन जैसे करने का हुक्म है ना, इसी तरह अगला हुक्म क्या है, वला तावन वल इस्मि वल उदवान, और गुनाह और ज्यादती के कामों में किसी से तावन ना करो। जब किसी की मदद करने लगे चंद सेकंड सोचें, ये नेकी का काम है जिसपे मैं इसकी मदद करने लगी हूँ, ये गुनाह का काम तो नहीं, मैं तो इसके गुनाह में शामिल हो जाऊंगी। बार बार दोस्तों के नाम पे, सहेलियों के नाम पे हम कई के दिन तक लोगों की चीजें सजाते बचाते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके घर में कोई रस्म है, कोई फलां चीज है फलां है। तो हमेशा अच्छे कामों में मदद कीजिए, इससे इंशाल्लाह आपके वक्त में बरकत होगी। और अगर बात समझ नहीं आई तो वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, यानी अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इसके बाद हराम चीज़ों में कुछ चीज़ें देखिए, जन्नत में आदम पर सिर्फ एक चीज़ हराम थी, शजर ममनुआ, कोई भी था। आज हम मुसलमानों पर सिर्फ चार चीज़ें हराम हैं। अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि इस्लाम में क्या हराम है, आपके बहुत कुछ हराम है, ये भी हराम वो भी हराम, नो। पूरा दस्तरखान, पूरा ग्रोसरी स्टोर, खाने का पीने का सब हलाल है, सिर्फ चार चीजें हराम है। हुर्रिमत अलैकुम अल-मैतातु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, ये चार चीजें पूरी शरीयत इस्लामिया में हराम है, बाकी सब खा सकते हैं। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, वो जानवर जो खुद मर जाए, खून सुअर का गोश्त, वो जानवर जो खुदा के नाम के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो, और वो जो गला घुटकर या चोट खाकर बुलंदी से गिर पड़ा या टक्कर खाकर मरा हो या किसी दरिंदे ने उसको फाड़ दिया हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबह कर लिया, और वो जो किसी आस्ताने पर ज़िबह किया गया हो। नीज ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। ये सब अफाले फिस्क हैं। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी, बस तुम इनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया। बस हलाल और हराम की जो पाबंदियाँ तुम पर आयद की गई हैं इनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका रुझान हो, तो बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। थोड़ा सा इस लिस्ट को हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ मैता है, हर वो जानवर जो है तो हलाल लेकिन उसको गैर इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। वेस्ट में रहते हुए ये सवाल बहुत आम है, क्या हम मैकडोनल्ड का चिकन खा सकते हैं, चिकन केंटकी खा सकते हैं, क्या रेगुलर स्टोर्स का चिकन मीट खा सकते हैं। सिंपल सी बात आज समझ लीजिए, आगे ये दोबारा सूरत नाम में दोबारा भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। देखिए दो शरायत हैं इस्लाम में, मसलन बकरी गाय भैंस का गोश्त जिसका भी आप खाते हैं, पहली चीज़ यह है कि उसको ज़िबा करते वक्त उसकी रगे गर्दन जब काटी जाए तो उस वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा जाए, अल्लाह का नाम। आप ले लें, क्रिश्चियन ले ले या जियो ले ले, ठीक है, इट्स वैलिड, अल्लाह का नाम ले। दूसरी शर्त के कि उसकी गर्दन की रग थोड़ी सी काट के उसको छोड़ दिया जाए, फिर वो जानवर तड़पता है। जब तड़पता है ना तो जिस्म से खून सारा बाहर जाता है, जिस्म में जो खून होता है ना ये ऐसी है जैसे गटर की पाइपें, सारे घर की गंदगी उसमें जाती है। जिस्म में जितने सेल्स टूटते हैं सारा दिन खून के अंदर उसके जरासीम जाते हैं। जब जानवर तड़पता है उसके जिस्म से वो खून निकलता है तो उस जानवर में जो बीमारी के जरासीम थे वो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी गोश्त पा के एंड पे उसकी गर्दन काट लें। ये दो शरायत है बस, मुसलमान कर ले, क्रिश्चियन कर ले, ज्यूस कर ले। अगर कोई ये दो शर्तें पूरी नहीं करता तो चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं है उस चीज़ को हम नहीं खा सकते। दूसरी चीज़ आप देखिए खून है, जैसे वो तो ऑफकोर्स हर खून हराम है, अब कुछ कल्चर ऐसे उसमें खून को पीते हैं एज अ ड्रिंक, तो आप सोचिए फिर उससे बीमारियां तो आएंगी। तीसरी चीज़ आप देखिए लहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, गोश्त हराम है तो उसकी चर्बी, उसकी खाल, उसका सब कुछ हराम है। वजह क्या है? गंदा जानवर है। पहली बात है, हमारे लिए इतना ही बहुत है कि अल्लाह ने कह दिया, जिसका जानवर बनाया हुआ उसने है, और इसमें होमोसेक्सुअलिटी है, गंदा है, अपनी गंदगी खा जाता है, इसके जिस्म पे पोर्स नहीं होते, उससे पसीना नहीं निकलता, तो इसमें हर तरह की अखलाकी, रूहानी और जिस्मानी बीमारी है। और सबसे बड़ी बात कि इसका इनसाइट इंसान से बहुत मिलता है। अगर इसको कोई बीमारी होगी, इंसान इसका गोश्त खाएगा, वो सीधा जाके इंसान को लग जाएगी। अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे। तीसरी चीज़ आप देखिए, वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि भी, हर वो चीज़ जिसको अल्लाह के नाम के सिवा किसी और की खुशी के लिए कुर्बान किया जाए। अब इसमें बहुत कुछ आता है, इंशाल्लाह सूरह अल-अनाम में इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे पेटों में हलाल जाए। थोड़े से टेस्ट के लिए हम बाज दफा, लोग कहते हैं सस्ता मिलता है, तो सस्ते के लिए आप छोड़ देंगे, और इसी तरह से जब आपको ये खराबियां इसकी पता चलती हैं, तो फिर तो कभी भी दिल नहीं करता कि इन चीजों को खाएं। आगे एक सवाल है और उसका जवाब, यसलूना का माजा ओहिल्ला लहुम, लोग पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया, कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। कितना आसान जवाब है, दीन पाक है, इस्लाम पाक है, इन अल्लाह तैयब, अल्लाह भी पाक है, लिहाजा वो नापाक चीजों को हलाल नहीं करता। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे इसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ते इस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। आज के दिन तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गईं, अहले किताब का खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए भी हलाल है। अब देखिए जवाब मिल गया आपको, कौन सा खाना अहले किताब का हलाल है? जो हलाल खाना है, इससे मुराद गोश्त है। कौन सा? जो वो इस्लामिकली ज़िबा करते हैं। अब बताइए, अहले किताब का खाना हलाल है तो शराब मिला हुआ केक हलाल है? नहीं हलाल। अगर वो गोश्त इस तरह के स्टोर से लाते हैं जिसमें इस्लामिकली ज़िबा नहीं हुआ, तो हलाल नहीं है। अदरवाइज आप देखिए कि किसी के साथ खा लीजिए, वेजिटेरियन है, सब्जी है, गोश्त है, खा ले। इसी तरह आप गैर मुस्लिम का खा सकते हैं। दो चीजें ध्यान में रखिए, नंबर एक उसमें जाहरी गंदगी ना हो, और दूसरी बात है किसी बुत के नाम पे उसको भेंट चढ़ाया हुआ या किसी भी ऐसे तरीके से उसको रखा हुआ, कोई ऐसी चीज ना की जाए कि मतलब अल्लाह के साथ शिर्क हो जाए। इसके अलावा बाकी चीजें खा सकते हैं। अब अगला सवाल यह कि क्या नॉन मुस्लिम औरतों से एक मुसलमान मर्द शादी कर सकता है, यानी यहूद और नसारा की खवातीन से? उसका जवाब देखिएगा, वल मुहसनातु मिनल मोमिनाति वल मुहसनातु मिनल लजीना उतुल किताब मिन कब्लिकुम, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के गिरोह में से हों या इन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, बशर्ते कि तुम इनके मेहर अदा करके निकाह में इनके मुहाफिज बनो, ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयां करो। नोट कीजिए, किताबी औरत से निकाह की शराइत बताई गई, अगर इन शराइत पे पूरे उतरते हैं तो ठीक है, अगर पूरे नहीं उतरते तो फिर सोचने की बात है। और जिस किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया, तो इसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा और वो आखरत में दिवालिया होगा। बस जब ऐसी शादियां जो बेजोड़ होती हैं, उससे दीन का भी दिवालिया हो जाता है। अगर एक मर्द नेक है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसको किसी भी किताबी औरत से निकाह करना चाहिए, क्यों? कि वो उसको भी आखिर इस्लाम पे ले आएगा, और अगर पहले ही बिगड़ा हुआ है और पहले ही छुपी दोस्तियां हैं, तो फिर तो वो उसका भी दीन बिगड़ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे नौजवानों के जो मियार हैं रिश्ते चूज करने के, उसको दुरुस्त कर दें। इसके बाद अगली आयतों में वुजू का तरीका है। देखिए इशारतन इधर है, असल वुजू का तरीका हदीस से मिलता है। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जुनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ, अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई शख्स रफाए हाजत करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। यहां से अब तयम्मुम के मसाइल, तो पाक मट्टी से काम करो। कैसे तयम्मुम किया जाएगा? बस इस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लो, दैट्स इट। कुछ लोग हैं जो तयम्मुम करते हैं, कैसे? एक सहाबी थे, उनके ऊपर गुसल की कैफियत तारी हो गई नबी सल्लम के दौर में। अब पानी नहीं था या सर्दी की रात थी, बाहर गए, मिट्टी में लौटने लगे, जैसे गधा जमीन पर लौटनिया लेता है, सारे जिस्म पे मिट्टी लगाने लगे। अल्लाह के नबी तक बात पहुंची, कहा तू क्या कर रहा था? कहा जैसे पानी हर जगह पहुंचाना है, वहां ऐसे हर जगह मिट्टी पहुंचा रहा था। आपने मुस्कुरा कर कहा, तुझे बस इतना ही काफी था, ऐसे एक दफा हाथ लिए, फूंक मारी इस तरह से, और इसके बाद मुंह पे हाथ। तो यम्मुम गुसल के लिए भी और वजू के लिए भी ऐसे हो गया खत्म। इसकी वजह क्या है? मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता। देखिए, एक तो वो वक्त है कि एक नाहुन बराबर जगह खुश्क रह गई तो वजू नहीं होगा, सबको मसला पता है। नेल पॉलिश लगी हुई थी, वजू किया, अब वो जगह खुश्क रह गई, अब उतारिए उसको, फिर वजू कीजिए, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कि सिर्फ एक सूखी मिट्टी के साथ मुंह पे हाथ फेर लो तो होता है, ये है हमारे दीन की खूबसूरती। हालात के मुताबिक आपको अल्लाह ताला गाइडलाइन देते हैं, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। हमें शायद इस्लाम की इन चीज़ों की इतनी वैल्यू ना हो। एक सिस्टर की मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी कि किसी नॉन मुस्लिम लड़के से उसको मोहब्बत हो गई, घर वालों को पीछे डाल डूल के उसने उससे शादी कर ली। कहती है, जब तक उसे शादी नहीं की हुई थी तो मैं उसके शहर में मुबतला थी, बट जब मैं उसके घर उसकी बीवी बन कर गई, फिर जो मैंने उसकी गंदगियां देखी और जो मैंने उसका फिजिकली हाइजीनिकली इम्प्योरिटीज देखी, मुझे उससे नफरत हो गई। शराब पीकर घर आता था, रोज बिस्तर पे रात को, कहती थी, उसकी वॉमिट उठाती थी। तहारत का कोई अंदाज ही नहीं, वॉशरूम यूज करने का कोई सलीका नहीं है। आप इन आयतों को पढ़कर देखिए, आज भी एक अच्छे पाक साहब बुजुर्ग का तसव्वुर आता है, हर वक्त वजू से रहना, नमाज का इंतजार है, तहारत करते हैं, इस्तंजा करते हैं, छींटे ना पड़ जाए, कितना प्यारा दीन है। याद रखिए, जो फिजिकल जिस्मानी तौर पर इन चीजों का ख्याल रखता है ना, कुदरती तौर पे भी, रूहानी तौर पे उसका नमाज में भी दिल लगेगा, इबादत में भी दिल लगेगा। तो छोटे बच्चों को शुरू से इस चीज़ की आदत डालिए, तहारत की आदत डालिए। स्कूलों में बाज़ दफ़ा मैंने सुना है कि इकट्ठे सबको फारिग कराया जाता है, गंदगी का एहसास खत्म हो जाता है। ये चीज़ें हमारी नस्लों के लिए बहुत खतरे की हैं, अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह ताला नेमत इस्लाम को यहाँ पेश करते हैं, वस्कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम, अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है इसका ख्याल रखो, और उस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो इसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और इताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। दुआ करें कि हम भी सुन के मानने वाले बन जाए। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। अल्लाह हमें भी हक की गवाहियां देने वाला बना दे। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तैल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, अदल करो, ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। और इसके बरक्स जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर दे। अल्लाह ने उनसे वादा किया कि इनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा और इन्हें बड़ा अजर मिलेगा। क्या पता चला, बड़े से बड़े गुनाह करके भी इंसान अगर अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। रहे वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयतों को झुटलाएं, तो वो दोजख में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और दूसरों को दोजख का ईंधन बनने से बचा दे। या अय्युहल्लज़ीन आमनु उस्कुरू नेमतल्लाही अलैकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो इसने अभी हाल ही में तुम पर किया। जबकि गिरोह ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा किया, मगर अल्लाह ने इनके हाथ तुम पर उठने से रोक लिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आए कि दुश्मनों ने आपकी जान तक लेने की कोशिश की, लेकिन हर मौके पर अल्लाह ने बचा लिया। यहाँ भी यही पैगाम है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम अल्लाह से डरते हुए रहो। लोगों से डरेंगे, लोग और डराएंगे, अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह ताला दूसरों के दिलों में आपका रूप डाल देगा। वलकद अखज़ अल्लाह मीसाक बनी इसराइल, अब यहाँ वो वादा है जिसका तذکرہ पीछे भी बहुत दफा आया कि बनी इसराइल से उनकी किताबों और उनके अंबिया के जरिए जो वादे लिए गए थे उसमें क्या बारीकियां थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और इनमें 12 नकीब यानी सरदार मुकर्रर किए थे, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा, और इनसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और इनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से कुफर की रविश अख्तियार की, तो दर हकीकत उसने सवास सबील गुम कर दी। फिर ये इनका अपने अहद को तोड़ डालना था, जिसकी वजह से हमने इनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और इनके दिल सख्त कर दिए। अब इनका हाल ये है कि अल्फाज को उलट फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो तालीम इनको दी गई थी इसका बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं और आए दिन तुम्हें इनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता रहता है। इनमें से बहुत कम लोग इस ऐब से बचे हुए हैं। बस जब ये इस हाल को पहुंच चुके हैं तो जो शरारतें भी ये करें वो इनसे ऐन मुतवक्के हैं। बस इनको माफ करो और इनकी हरकत से चश्म पोशी करते रहो। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो एहसान की रविश रखते हैं। आप देखिए कि दीन का काम करने के यहाँ तरीके सिखाए गए। आज उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला की मदद कैसे ले सकती है जब इसे कायद में दर्ज हिदायत पे अमल करे। हकीकत यह है कि जब हम गलत तरीके से सही काम करना चाहते हैं तो भी अल्लाह की मदद और उसकी रहमत उठ जाती है। दीन के लिए कुछ ना कुछ मुश्किल तो आएगी। अगर आपको कहा जाए कि दीन के काम के लिए निकलें और हर कदम पर आपको 100 यूरो का नोट मिलेगा, तो कितने लोग हैं जो इससे पीछे रहें? बहुत कम। लेकिन जब इस काम के ज़ाहरी फवायद नज़र नहीं आते तो हम हर चीज़ में आगे आने वाले दीन के मामले में पीछे हो जाते हैं। अगर आज कह दिया जाए कि हिजाब पहनने वाली हर लड़की को हर 1 घंटे के बाद 1 हीरों का ताज मिलेगा, कितने ही हैं जो ना छोड़ें? असल बात यह है कि यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस बात की खबर दी कि पिछली कौमों ने जब अल्लाह के काम को गैर संजीदगी से लिया, अल्लाह ताला ने उनसे ये नेमत छीन ली। और किसी भी इंसान पर ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह ताला उससे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह ताला आज उम्मत मुस्लिमा से वो काम ले ले जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो से लिया और उनसे पहले और उनके बाद के नेक लोगों से लिया गया। अब आज के कुछ और मजीद हालात। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब। इसी तरह हमने इन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर इनको जो सबक याद कराया गया था इसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फरामोश कर दिया। कौमें जब अल्लाह के दिए हुए पैगामात को भूल जाती हैं तो अल्लाह की मदद भी चली जाती है। आखिरकार हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बुग़्ज़ और इनाद का बीज बो दिया। नोट कीजिए, दिलों में बुग़्ज़ और दुश्मनी कब आती है? जब अल्लाह का पैगाम भूल जाता है। और ज़रूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह इनको बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है। देखिए ये पुकार सूरत मायदा में कितनी दफ़ा लग रही है। और असल में आप सोचिए, जब वाकई नबी सल्लम मौजूद थे उस बस्ती में जहाँ ये पुकार लगती होगी, तो कैसे दिल हिलते होंगे। कौन सा रसूल जो किताब इलाही की बहुत सी इन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे और बहुत सी बातों से दरगुजर भी कर जाते थे। ये एक बहुत बड़ी वजह थी अहले किताब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहने की। कहते थे ये हमारी सियानतों को क्यों खोलते हैं, या जो बातें हमने आम लोगों को नहीं बताई अब ये क्यों बताते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, आज भी बहुत सारे लोग कुरान पढ़ने से इसलिए दूर रहते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें इंसान पर खुलने लगती हैं जो कभी सुनी भी नहीं होती। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई और ये कैसी हक नुमा किताब जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला इन लोगों को जो इसकी रज़ा के तालिब हैं सलामती के तरीके बताता है। ये किताब आपको मुझे सलामत रहना सिखाती है और अपने इज़्ज़त से इनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है। तो ये क्या है? रोशनियों का सफ़र। आप देखिए, लोग किसको रोशन ख्याल कहते हैं अमूमन? जो दीन से दूर होते हैं। अल्लाह बताते हैं इस किताब पे अमल करने वाले असल में रोशन मिजाज हैं, क्योंकि वो खुले दिल के मालिक होते हैं और राह रास की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। ऐ अल्लाह, तो हमें भी सिरात मुस्तकीम पे फाइज कर दे। लकत कफर अल्लज़ीन क़ालू, यकीनन कुफर के इन लोगों ने जिन्होंने कहा मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। ऐ नबी, इनसे कहो अगर खुदा मसीह इब्ने मरियम को और इसकी मां को और तमाम जमीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है कि इसको इसके इरादे से बाज रख सके। इसको दलील कहते हैं। کہ تم جس کو خدا کہتے ہو اگر اس کی بھی موت کا وقت آ گیا تو پھر مان لو کہ وہ خدا نہیں ہے. اللہ تو زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. یاد رکھیے، ہر دور میں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ان کو خوش فہمیوں نے لے لیا. یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ وی آر چوزن پیپل. آج مسلمانوں میں بھی یہ ہو سکتی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم چنے ہوئے، ہم بڑے خاص لوگ ہیں، سیدوں کی پشت بڑی پاک ہے، ہم کچھ بھی گناہ کریں اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں باتوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ ان سے پوچھو، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین و آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا اور دین کی واضح تعلیمات تم کو دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات، بشیر اور نذیر. بشیر کس کے لیے؟ جو نیکیاں کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، ٹوٹے پوٹے صحیح عمل تو ہیں. اللہ کے نبی اس کو خوشخبریاں دیتے تھے، تم چل رہے ہو اللہ تمہیں اور چلائے گا. لیکن نذیر اس کے لیے جو ہر حکم کو سن کر، جو بڑے سے بڑی بات کو سن کر پھر بھی کہے کہ میں نہ مانوں، میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ صفت سامنے رکھیں تو ہمیں اگر واقعی بشارتیں لینی ہیں، خوشخبریاں لینی ہیں، تو پھر ہمیں اچھے کاموں کی کوشش کرنی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ نہیں چاہتا کہ آپ پورے کے پورے اوور نائٹ چینج ہو جائیں، لیکن کوشش تو ہے. جیسے ایک بچہ ہے، چلنا شروع کرتا ہے پھر گر پڑتا ہے، رینگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر بھاگنے لگتا ہے. نیکیوں کا سفر بھی انشاءاللہ اسی طرح شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ بھی تھامے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. کتنا مان تھا اللہ کو اس قوم پہ بھی. آج امت مسلمہ کو بھی اللہ نے سب کچھ دیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں. اے برادران قوم، اس مقدر سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نہ مراد پلٹو گے. یہاں حضرت موسیٰ کا کردار ایک لیڈر کے رنگ میں بہت خوبصورت ہے. اپنی قوم کی اپلفٹنگ، ان کو سر اٹھا کے جینا سکھا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہمت بندھائی جائے. یہ نہیں کہ ہر وقت ان کو یہی کہا جائے تم کچھ نہیں کر سکتے، تم تو نکمے ہو، تم تو بیکار ہو. بس مائیں اپنے بچوں کی ہمت صرف اس لیے توڑ دیتی ہیں تانے دے دے کر. تو ہمیشہ لوگوں کی ہمت بندھائیں، تھوڑا کریں، ان کو زیادہ لے کر چلیں. انہوں نے جواب دیا ہے، موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. یعنی دشمن خود چلا جائے تو ہم جا کے وہاں فتح کا جھنڈا لگا لیں گے. ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. یہاں ذرا سا رکیے، شاید جلدی میں آپ سوچ نہ سکیں اس لیے میں نے آپ کو وارن کیا. یہاں کس چیز کو اللہ نے اپنی نعمت کہا؟ اپنے خوف کو. بنی اسرائیل کی ہسٹری کا واقعہ، ساری قوم بدک گئی. دو ینگ بچے، دو ینگسٹرز تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا ہم کھڑے ہوں گے. آج بھی امت مسلمہ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. بڑے لوگ ناکارہ ہوتے جاتے ہیں، وہ مصلحت پسند، وہ ڈرپوک، وہ خوف زدہ، اور ینگسٹرز آگے آتے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم کیا خراب کر رہے ہیں؟ تو اللہ سے یہ ڈر مانگنا چاہیے جو دین کی جرت عطا کرے. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں. ایمان اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. جب اللہ ہے تو پھر کس کا غم، کس کا ڈر. لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا ہے، موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ. دیکھیے گا قومیں کتنی سست ہو جاتی ہیں جب اس طرح کے حالات ان پر آتے ہیں. वो कहते हैं ना, गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। फिरौन की गुलामी में रह रहकर बनी इसराइल के हौसले पस्त हो चुके थे। वो सोच ही नहीं सकते थे कि हम दुश्मनों पर कब्जा पाएंगे। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। ये सुस्त मिजाज कौमों का हाल होता है। ये अल्लाह खुद कर लेगा, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। नहीं, अल्लाह ने असबाब लेने, काम करने, मेहनत करने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा आज हम मुसलमानों को भी यही कहना चाहिए कि हम अपनी कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम नहीं जा रहे। इसके बरक्स मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं। यहाँ बेबसी महसूस करें, नबी हैं, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, लेकिन कौम बात नहीं मानती तो कितने बेबस दिखते हैं हम। अगर मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। ये वक्त आता है जब बंदा देखे कि लोग बात नहीं मान रहे, फिर आप उनकी गलत रविश छोड़ दें। ये बहुत बड़ा जुल्म है अपने ऊपर कि लोग आपके कहने पे नेकी नहीं करते तो आप उनके कहने पे गुनाह करना शुरू कर दें। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक इन पर हराम है, ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे, इन नाफरमानों की हालत पे हरगिज़ तरस ना खाओ। ये सजा थी।